उस मुजरिम डॉक्टर का नाम फ्रामर्जी है। उसका असली ठिकाना एक कॉफी शॉप था। कुछ लोगों ने वहां उसको पहचाना था। उनसे पूछने पर कोई खास चीज सामने नहीं आई सिवाय एक चीज के, एक छोटा सा वर्कशॉप और उसका मालिक जो अभी तहकीकात के कमरे में है।
इस एजेंसी का नंबर इसी इलाके का है, पता लगाओ ताकि उसकी तफसीलात मालूम हो सके।
उस एजेंसी का कोई भी ड्राइवर या मैनेजर फरामर्जी को नहीं पहचानते हैं।
उन सब से पूछा?
एक को छोड़कर सबसे, क्योंकि वो सवारी लेकर शुमाल गया है।
शायद वो पहचानता हो।
कल उस ड्राइवर के आने तक सब्र करना होगा।
ये शादी अंजाम पाए मगर तीन शर्तों पर। पहली बात यह कि तुमको तलाक हासिल करने का हक होगा। दूसरे ये कि कावे बुजुर्ग मेहर खानदान का नाम इस्तेमाल करेगा, किसी भी हालत में अपने बाप का खानदानी नाम इस्तेमाल नहीं करेगा। जब सम सामी आए तो ये सब बातें बता दो।
डैड, मैं वादा करती हूं कि मैं खुश रहूंगी।
मुझे भी उम्मीद है।
डैड, आपने तीसरी शर्त नहीं बताई।
तीसरी शर्त नरगिस है। नरगिस जान,
फिलहाल इन पैसों को खर्च करो और मेरे फोन का इंतजार करो। खर्च करो, वक्त आने पर बताऊंगा। लेकिन अभी मैं ये चाहता हूं कि तुम हर दिन हर घड़ी अहमद रजा की हालत से मुतालिक हर खबर मुझे देती रहो, ताकि हम दोनों का काम चलता रहे।
क्या हुआ?
बात काट लिया।
समसामी बाहर है रोया के साथ। हम लोग जा रहे हैं शादी के रजिस्ट्री ऑफिस।
जानता हूं
तुम नहीं आओगे।
आपको ये शादी मंजूर है जो रजिस्ट्री ऑफिस जा रहे हैं?
मुझे तुम्हारी शादी भी मंजूर नहीं थी, मगर मैं रजिस्ट्री ऑफिस हाजिर हुआ था।
मगर आपको मां पर यकीन था? क्यों, ठीक है ना?
डैड, मैं और समसामी अंकल आपका गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं।
और भी इंतजार करो।
ठीक है।
तुम्हें क्या हुआ लड़के?
मेरा दिमाग फटा जा रहा है।
कावे के साथ रोया की वजह से?
कावे ने मेरे हक में कोई बुराई नहीं की है जो मैं रोया के साथ शादी को लेकर डरूं। मेरी परेशानी उनकी रविश को लेकर थी। वो भी आपको खबर है कि अभी अपनी कानूनी रविश पर जा रही है और साथ में शरी भी। मेरा डर आपको लेकर है। अचानक सब चीजों ने मुंह खोल दिया है कि कावे की मां थी, बाप था और ये कि कावे मेरा भाई है। छुपाना। आपने और पुपी फ्लोर ने उसकी मां को पागल बना दिया। और क्या क्या हुआ मालूम?
कैसी जिंदगी है कि हर घड़ी औलाद को तफसील बताई जाए?
क्या
ये कैसी जिंदगी है कि हर घड़ी औलाद को तफसील बताई जाए?
जाहिर है तफसील बतानी होगी, क्योंकि हम एक साथ जिंदगी गुजारते हैं, हम एक घराने के लोग हैं, सभी एक दूसरे की चाहते हैं, सभी एक दूसरे के वाबस्ता हैं, हमारी अच्छाई बुराई एक दूसरे पर असरअंदाज होती है। आप मेरे वालिद हैं, मेरे बड़े हैं। मेरे इस बड़े ने अपने भाई की औलाद को हमसे छुपाकर क्यों रखा, क्यों हक को नाहक कर दिया, उसकी मां को बेघर क्यों कर दिया? अब मुझे हर चीज पर शक है, यहां तक कि आपका अहमद रजा के साथ वो बिल्डिंग का प्रोजेक्ट और आपकी मजलूमत पर भी मुझे शक है कि इसमें सच्चाई भी है।
जाहिर है कि सच्चाई है, जाहिर है कि है।
बेवकूफ आदमी, मेरी आंखों की तरफ देखो, अंदर घुस गई है। मेरी बेटी मुझे धमकाती है, मेरा बेटा मुझे धमकी देता है, 8 अरब का कर्ज सर पर चढ़ गया, मेरी जिंदगी गंदगी का ढेर बन गई है। ऐसी हालत में हर इंसान कुछ भी करने पर मजबूर हो सकता है, खानदान को महफूज रखने के लिए कुछ भी कर सकता है, अपने घर वालों की जमा पूंजी को बचाने के लिए जरूरी है यह असर कर सकता है। मुमकिन है कि यह दूसरों की नजरों में गलत दिखाई दे, मगर यह वही है जो जानता है कि जो कुछ वो कर रहा है सही है।
किसी चीज का सही या गलत होना कोई खास या जाती चीज नहीं है जो कोई समझ ना सके। जो गलत है गलत है, जो सही है सही है।
दरअसल कावे की मां अपने शौहर की मौत की वजह से पागल हो गई थी, बस यही।
बस यही। डैड, अगर आप झूठ बोलेंगे तो मुझे चकनाचूर कर देंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि सच क्या है बताएं। कावे की मां की दीवानगी और मौत का ताल्लुक आपसे है या नहीं?
डैड, आपको मेरी मरहूम मां की कसम,
आपका हाथ था इसमें। मेरे डैड, मैं आपका गुलाम हूं, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं,
बस एक बार मेरा और आपका फरीजा मालूम हो जाए कि क्या है।
आपका इस मामले में हाथ था या नहीं था? मैं इस मामले की गहराई तक जाऊंगा, नरगिस तक, कावे तक, और वहां तक जाऊंगा जहां तक सच्चाई का पता चले। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप खुद सच्चाई बता दें। आपका हाथ था या नहीं?
दुल्हन के वालिद, दूल्हे के वालिद, दूल्हे के वालिद,
बहुत मुबारक हो।
मैं पूछ सकती हूं कि आप क्या सोच रहे हैं?
नहीं, मत पूछो। फातिमा, बाबक को वापस लाओगी? बोलो, लाओगी?
हाँ।
खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।
वादा करती हो?
फिर आते क्यों नहीं हो?
हाँ, वादा करती हूं।
ख्याल में अहमद रजा की बीवी को मुझसे क्या काम हो सकता है?
कोई वजह नहीं कि मैं अंदर जाऊं, तुम ही जाओ।
बैठो, मैं आता हूं। सलाम। कल कावे से पता चला कि यह हादसा पेश आया है।
सलाम।
मुझसे कोई काम था?
हम सबका एक मुश्तरका मकसद है, अहमद रजा। सही कहा?
मुश्तरका मकसद, गैर मुश्तरका एहसास के साथ।
मुझे एहसास से सरोकार नहीं। अहमद रजा का जिंदा रहना जरूरी है। जिंदा रहने के लिए शर्तें मतलूब हैं, मसलन खुदा की मर्जी, दुआ करना, डॉक्टर, अस्पताल, आईसीयू का कमरा। क्यों, ठीक है ना?
हाँ, सही है।
मेरे साथ कुछ परेशानी है। परेशानी तो नहीं, अलबत्ता ये एक जरूरत है, पैसा। मेरे शौहर के इलाज के लिए पैसा, अस्पताल में पड़े मेरे शौहर के इलाज का खर्चा। मैं अपने डैड से ले सकती हूँ या किसी और से भी ले सकती हूँ, लेकिन मैं ये काम नहीं करना चाहती। जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरा अकीदा है कि मेरा शौहर इस बीमारी से सर उठाएगा। मैं नहीं चाहती कि ठीक होने के बाद मेरी तरफ देखे और मेरा शुक्रिया अदा करे और मेरे एहसानों पर मशकूर हो और इस बात का शुक्रगुजार हो कि मैंने उसके लिए छोटे बड़े से मदद ली। मैं नहीं चाहती कि वो ऐसी बातें करे।
इसका मतलब तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए ताकि उसे खर्च कर सको।
है, मतलब ये कि मेरे शौहर के पास है। वालिद की तरफ से एक मकान, मीराज का पेदरी तरका है, मगर बरसों से मेरे शौहर के भाई का उस पर कब्जा है। कुछ वजूहात के बिना पर, शायद जिद की वजह से या हलाल और हराम के ना जानने की वजह से। हम सबका एक ही मुश्तरका मकसद है, इसलिए एक दूसरे की मदद करें ताकि अहमद रजा जिंदा रहे। लिहाजा आपका भी फर्ज बनता है कि मदद करें ताकि अपने शौहर का हक हासिल कर सकूं और उसी पर खर्च कर सकूं। आप मेरे लिए कोई रास्ता निकाल सकते हैं?
क्या सिर्फ अहमद रजा बाबाई और उसका भाई वारिस है?
हाँ, क्यों?
सिर्फ एक रास्ता है कि तुम अपना मेहर मुतालबा करो, क्योंकि मेहर इंदल मुतालबा है। तुम मेहर मांग सकती हो और हुकूमत भी उस वक्त तुम्हारे शौहर की मिल्कियत पर कब्जा कर लेगी।
लेकिन मेरे शौहर के पास तो कुछ भी नहीं है।
जिस घर के बारे में तुम बात कर रही हो वो तुम्हारे शौहर की मिल्कियत है, जो मीरास का हिस्सा है, लेकिन इसमें वक्त लगेगा, मराहिल से गुजरना पड़ेगा।
आप मदद करेंगे? करेंगे ना?
खुदा हाफिज।
डॉक्टर अहमदी आईसीयू, डॉक्टर अहमदी आईसीयू।
सलाम।
सलाम।
तुम यहाँ क्या कर रही हो?
आई थी मुलाकात के लिए, तुम्हारे शौहर को भी देखा, वो चमचे की तरह मशीन थी।
वो मुंह में जो लगाते हैं वो मशीन थी। एक पाइप और सिलेंडर, उसका क्या नाम है जिससे सांस लेते हैं? खूब खूब अच्छी तरह देखभाल कर रहे हैं इंसाफ के साथ।
जिस दिन सांस लेने के लिए मशीन की जरूरत पड़ जाए फिर कुछ नहीं किया जा सकता।
हो जैसा
से मिलना चाहती थी।
आपकी पूरी पूरी उम्मीद ये थी कि अहमद रजा खुद से सांस ले रहा है, ठीक है ना?
हाँ ऐसा ही है।
लेकिन अब नहीं ले सकता, लेकिन अब एक गहरी सांस भी नहीं ले सकता और जमाही भी नहीं ले सकता। क्यों?
हाँ सही है,
अब कोई उम्मीद भी नहीं। यह है,
खुदा से लो लगाओ
है, मगर आप जो उसके बंदे हैं आप क्या कहते हैं? आपने इससे पहले इस तरह के हालात देखे हैं, आपका तजुर्बा क्या कहता है? बोलिए। डॉक्टर साहब बोलिए, बताइए।
इन मौकों पर
वाला है बाबा, मैंने सोचा एक और नंबर रखना चाहिए।
चोरी का है? मैं पूछती हूं कहां से लाई। पूछ रही हूं कहां से लाई।
अपनी गाड़ी बेच दी अपनी गाड़ी। मेरे भाई मोती ने दुकान खोली है, उसमें कुछ सामान नहीं है। मैंने कहा था दुकान का सामान मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए अपनी गाड़ी बेच दी। अभी जा रही हूं अपनी गाड़ी उसके हवाले करके, बाकी का पैसा भी लेना है।
मुझे बेवकूफ समझती है।
कह रहे थे कि आखिर में ऑक्सीजन लगाया है ताकि सांस ले सके। हेलो, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो?
हाँ सुन रहा हूँ।
ये खबर तुम्हारे लिए अच्छी है या बुरी? हाँ, ये तुम्हारे लिए अच्छा है या बुरा?
मेरे ख्याल में अच्छी है।
तुम्हारे ख्याल से अच्छा है? तुम सोचते हो ये अच्छा है, इसका मतलब तुम उसके शौहर की मौत चाहते हो? क्यों?
छोड़ सरवा मत बचाओ, मेरे ख्याल में सब कुछ ठीक हो रहा है। अहमद रजा मर रहा है, सब ठीक हो जाएगा।
तुम कमीने और गंदे इंसान हो, कुछ भी ठीक नहीं होगा। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम एक घिनौना और कातिल इंसान हो, समझे तुम?
मैं कातिल नहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं फरजीन? हमने एक गलती की है, उसको समेटना होगा।
मैं नहीं, तुम और तुम्हारे दोस्त लोग, मुझे इनमें शामिल मत करना।
क्यों नहीं? तुम भी हम में से एक हो। अब जबकि हम सब फंसे हैं तो आखिर तक जाना ही होगा।
आखिर तक की बात ही नहीं है, यहाँ से निकलते ही मैं पुलिस के पास जाऊंगा। हमेशा तो मेरे हाथ पांव बांध कर नहीं रख सकते ना? रख सकते हो क्या? मैं पुलिस के पास जाऊंगा और तुम्हारी पोल खोल दूंगा।
हाँ? गड़ा कहीं का?
क्यों नहीं, उसकी शक्ल याद है मुझे। एक मर्तबा उसकी साइकिल खराब हो गई थी, उसकी साइकिल को डिग्गी में रखा और उसको घर तक पहुंचाया।
खुद उसके घर?
नहीं मालूम, लेकिन देखा कि घर में गया।
वहां का पता तो तुम्हें याद होगा?
उसका एड्रेस? हाँ शायद जानता हूँ।
घर के लिए अदालती इजाजत नामा लो।
जो
कैसे हो?
शुक्रिया,
हुक्म करें।
इस आदमी का घर यहाँ है?
हाँ।
किस मंजिल पर?
सातवीं मंजिल, कमरा नंबर 28।
दया से पुलिस वाले आपस में बातें कर रहे हैं और इनमें से 52 मुझसे बातें कर रहे
एक्शन फोर्स के आदमियों से रابطہ कायम करो।
जो
अभी वक्त क्या हो रहा है?
2 बज रहे हैं।
उस फोन पर जो भी बातें हुई मुझे 3 बजे तक उसकी तफसील चाहिए। आखिर किन लोगों से बात की? कम से कम 1 महीने से लेकर अब तक।
डॉक्टर, खुशी की बात यह है कि खून का रिसाव बंद हो गया है, अब बच्चा बच सकता है।
रजिस्ता, माफ करें, मेरी दोस्त खानम खुजिस्ता बिस्तर पर नहीं है, क्या उसे सोनोग्राफी से लाया नहीं?
क्यों नहीं, उसे बिस्तर पर लाकर लिटाया गया, मैंने खुद लाकर लिटाया।
फिर कहाँ चली गई?
हेलो
समसामी अंकल, डैड फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं?
जरूर सुना नहीं होगा, तुम्हें कोई काम था?
नहीं।
क्या बात है?
कुछ नहीं, पता नहीं क्यों डैड को लेकर दिल अचानक परेशान होने लगा।
सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये अच्छी बात है कि अब हम मियां बीवी हैं, ठीक है ना?
मेरे दिमाग में प्लानिंग ज्यादा है। सबसे जरूरी बात यह है कि मैं एक काम यह करना चाहती हूँ कि मेरे डैड के दिल में तुम्हारी जगह बिल्कुल पक्की हो जाए। मुझे मालूम है कि डैड को तुम बुरे नहीं लगते हो, अगर बुरे लगते तो इजाज़त नहीं देते। सारी दुनिया एक तरफ हो जाती फिर भी इजाज़त नहीं देते। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि ऐसा कुछ हो जाए कि डैड एक बार कावे बोले तो उनका दिल बाग बाग हो जाए। मैं चाहती हूँ कि तुम सब कुछ भुला दो, अपना माजी और कल सब कुछ।
भुला दूं? ठीक है, मतलब कि अपनी माँ को भुला दूं, नरगिस जान को भुला दूं, हाँ अपना बचपन, तन्हाई और सड़क छाप होना भुला दूं? अच्छी सोच है, है
तुम
ना?
बीमार लोगों की तरह लगते हो, तुम्हें खुद को सताना क्यों पसंद है? मैं तभी खुश रहूंगी जब सब कुछ मेरे पास और साथ हो, तुम और डैड दोनों साथ हो, और माजी की यादें तुम्हें और डैड को एक साथ नहीं रहने देंगी। माजी को भुला दो, मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों एक दूसरे को एक दूसरे का कर्जदार महसूस करो। मैं चाहती हूं कि तुम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाओ। माँ की बरसी के बाद जैसा कि डैड ने कहा कि शादी की छोटी सी रस्म खामोशी से करेंगे और अपनी जिंदगी को जारी रखेंगे।
इत्तेफाक से मुझे शोरगुल बहुत पसंद है।
बच्चा मत बनो, एक मकान ले लेंगे डैड के घर के पास बगैर किसी शोरगुल के।
इत्तेफाक से मुझे शोरगुल बहुत पसंद है।
देखो कावे, धीरे धीरे मुझे जहेज वगैरह की फिक्र करनी होगी। आइंदा साल तक हम लोगों को अपना मकान ले लेना होगा।
इत्तेफाक से मुझे शोरगुल बहुत पसंद है। मुझे शोरगुल पसंद है।
इसका क्या मतलब है? ये क्या है कावे?
मतलब ये कि जुमे के दिन शादी की रस्म बड़ी धूमधाम से मनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये खबर शहर के इस कोने से उस कोने तक पहुंचे। हम कोई गलत काम या चोरी नहीं कर रहे जो छुपा कर करें, हम सिर्फ निकाह की रस्म कर रहे हैं। इत्मीनान रखो, मैं वादा करता हूँ जब तुम्हारे डैड राजी होंगे तभी करेंगे, ठीक है? ठीक है, पहले चलते हैं एक अच्छे से रेस्टोरेंट में, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के मौके पर अच्छा सा खाना खाते हैं, ठीक है? ठीक है, ठीक है मेरी बीवी, अब हंसो भी, हंसो ना। ये हुई ना बात।
एक घंटे के अंदर, जैसा कि आपने कहा था।
कुछ तुम्हारी आंखों में नजर आ रहा है।
फ्रामर्जी ने अपने घर के टेलीफोन से जो आखिरी नंबर लगाया था वो शाइस्ता का मोबाइल नंबर था।
परवेज शाइस्ता?
जी नहीं जनाब, बाबक शाइस्ता।
Oh, no.